नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हमें जानकर बेहद खुशी हो रही है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से एज्रा नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पूर्व मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जल रही थी जिंदगी यहाँ गुनाह में, जल रही थी जिंदगी यहाँ गुनाह में, यीशु ने हमको ले लिया अपनी पनाह में, तेरा आवाज सबको आओ मेरे पास, तेरा आवाज सबको आओ मेरे पास, पास रखूंगा हमेशा होते क्यों निराश।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की प्रेम में संगति करते हुए कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी आप सब परमेश्वर की वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं उन सभी नए श्रोताओं का स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इस अध्ययन में बाइबल की पुस्तक में से एज्रा नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि एज्रा का परिचय और इसके साथ साथ में उसके दो पद तक का हमने मनन किया। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस पुस्तक में और कौन कौन सी मुख्य बातें पाई जाती है। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, दया और करुणा के लिए जिसे आप हमारे जीवन में देते हैं। आज इस समय जब हम आपके वचन में से सुनना, सीखना और जानना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए। हम सबों को एकाग्रतापन का मन दीजिए ताकि जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं तो निश्चित रूप से आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, हमसे हर एक से बोलने और बातचीत करने पाए, क्योंकि प्रभु आपका वचन दोधारी तलवार से भी तीखा और तेज है जो शरीर के अंग अंग और गुदे गुदे को छेद डालता है। आज हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहन की बातों को, उनके जीवन के तकलीफों को आप जानते हैं, उनसे बातचीत करें, हम सबसे बातचीत करें ताकि यह अध्ययन का समय हम में से प्रत्येक के लिए आशीष और शांति का समय ठहरे, हर एक जीवन आपको धन्य कहने पाए। हम सबके साथ हो, हमारे सहायक हो। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम इन दिनों पुराने नियम की पुस्तक उसके एज्रा नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हम पिछले अध्ययन में देख रहे थे एज्रा के परिचय को और आज हम आगे बढ़ते हैं। कुसरो ने राजाज्ञा निकाली कि जो भी परमेश्वर का जन है वह यहूदा के यरूशलेम में जाकर मंदिर का पुनः निर्माण करे। ध्यान दीजिए कि इसराइली बंधुआई में थे और वहां के राजा कुसरो ने यह आज्ञा निकाली कि परमेश्वर का जो भी जन है वह यहूदा के देश में जाए, अर्थात यरूशलेम में जाकर उस मंदिर का निर्माण करे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इज़रा की पुस्तक एक अध्याय उसके तीन पद में लिखा हुआ है, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए, जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। मेरे मित्रों, आप चूके नहीं, परमेश्वर ने कुसरो को आज्ञा दी थी परंतु कुसरो ने इसराइलियों को आज्ञा नहीं, अनुमति दी कि वे यरूशलेम जाकर मंदिर बनाए। तब हम आगे पढ़ते हैं एज्रा एक अध्याय उसके चार पद में लिखा है, और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहां वह रहता हो उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करें और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाएं। ध्यान दीजिए, उन्हें स्वदेश लौट जाने की अनुमति मिल गई थी, परंतु जो जाना न चाहे वे सोना चांदी और अन्य भेंटों द्वारा स्वदेश जाने वालों की पूरी सहायता करें कि वे यरूशलेम में मंदिर बनाने की आज्ञा को पूरी कर पाएं। आगे हम पढ़ते हैं इज़रा की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए, वे सब उठ खड़े हुए और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी के पात्र, सोना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उन सब से अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। मेरे मित्रों, जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि स्वदेश लौटने वालों की संख्या बहुत कम थी, मैं उनका न्याय नहीं करना चाहता क्योंकि उनके अपने कारण होंगे, परंतु अंततः यह परमेश्वर की इच्छा थी कि वे यरूशलेम को जाएं। कुछ ने लौट जाना ना चाहा क्योंकि अति संभव है कि वे बेबीलोन की सुख सुविधा और समृद्धि का लाभ उठा रहे थे। वे वहां बस चुके थे और अधिकांश जन वहां समृद्ध हो गए थे, अतः उन्होंने सोचा कि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है या अभी लौट जाने का समय नहीं आया है, अतः वे नहीं गए। मेरे प्रियो, मेरे लिए यह कहना उचित नहीं है कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं की। आगे चलकर जब हम एस्तेर की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तब हम इन लोगों का परिदृश्य देखेंगे और वह एक अच्छा परिदृश्य नहीं है। उस समय वे वास्तव में परमेश्वर की इच्छा में नहीं थे, परंतु उनके पक्ष में एक अच्छी बात यह थी कि दोनों समुदायों, लौटने वाले और ना लौटने वालों में परस्पर द्वेष नहीं था। जो नहीं गए उन्होंने जाने वालों को यथासंभव सहायता प्रदान की। जी हाँ, यह बड़ी रोचक बात है और मसीही सेवा से प्रासंगिक भी है। मेरे विचार में तो सबको विदेश जाकर सेवा करने की बुलाहट नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे अपना देश छोड़कर विदेश में सेवा करने की बुलाहट नहीं है, और मैं अति स्पष्ट शब्दों में आपको बता सकता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे विदेशी सेवा के निमित्त नहीं बुलाया है। मैं अपने विदेशी सेवकों में कुछ से कह चुका हूँ कि मैं अति स्पष्ट देख सकता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे विदेशों में सेवा हेतु नहीं बुलाया क्योंकि मैं मंद गति सेवा नहीं पाता हूँ। मुझे फुर्ती और मेहनत का काम चाहिए और प्रचार क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर के कुछ अति अद्भुत सेवक प्रचार क्षेत्र में हैं। अब इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि परमेश्वर ने मुझे नहीं बुलाया तो मैं उन्हें योग्य दान भी न दूं। मेरे प्रियो, हमें ऐसे उत्तम सेवकों को सहयोग प्रदान करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उन्हें प्रोत्साहित भी करना है। युद्ध के समय माना जाता है कि प्रत्येक सैनिक के पीछे 10 कर्मी उसे आपूर्ति, भोजन, कपड़ा, दवाइयां और हथियार प्रदान करते हैं। परमेश्वर की सेना में भी ऐसा ही होना आवश्यक है। मेरे मित्रों, इज़रा के युग में जो यरूशलेम नहीं लौटे उनमें यरूशलेम लौटने वाले अपने भाइयों के प्रति उत्तरदायित्व का बोध था। वे जो यरूशलेम लौटे दरिद्र वर्ग के इसराइली थे। तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए, वे सब उठ खड़े हुए। भजन संहिता 25:9 में भजनकार कहता है, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। ये ही वे लोग थे जिनमें समय की समझ थी, अतः वे स्वदेश लौट आए। मेरे मित्रों, कई बार जब कोई व्यक्ति परदेश चला जाता है तो उसे अपना देश याद आता है। वह चाहता है कि जल्दी से जल्दी अपने लोगों के पास पहुंच जाए, लेकिन यहां पर हम उस बात को नहीं पाते हैं। आइए आगे पढ़ें इज़रा की पुस्तक 1 अध्याय उसके 7 पद में, फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेज़र ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे। ध्यान दे, कुसरू को ये पात्र कैसे मिले? आप दानियल की पुस्तक अध्याय 5:2-4 में देखेंगे कि लिखा है, दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबुकदनेज़र ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। वे दाख मधु पी पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति ही कर रहे थे। उसी रात बेबीलोन जीत लिया गया। फारस के राजा ने इन पात्रों को अलग रख दिया और जब कुश्रू राजा बना तब वे वहां सुरक्षित रखे थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यह सुनिश्चित किया, ये पवित्र पात्र अर्थात परमेश्वर के काम के लिए पृथक किए गए पात्र यरूशलेम लौट रहे, याचकों और लेवियों को सौंप दिए गए। इज़रा 1:8 में हम पढ़ते हैं, उनको कुश्रो राजा ने मित्र तात खजांची से निकलवाकर यहूदियों के शेष बसर नामक प्रधान को गिनकर सौंप दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उन्हें अधिकृत रूप से यहूदियों को सौंप दिया गया था इसलिए उनकी सूची दी गई। तब आगे लिखा है इज़रा 1:9-11 में, उनकी गिनती यह थी अर्थात सोने के 30 और चांदी के 1,000 परात और 29 छुरी, सोने के 30 और मध्यम प्रकार की चांदी के 400 कटोरे तथा अन्य प्रकार के पात्र 1,000, सोने चांदी के पात्र सब मिलाकर 5,400 थे। इन सबों को शेष बसर उस समय ले आया जब बंदी बेबीलोन से यरूशलेम को आए। मेरे प्रियो, उनका मूल्य बहुत अधिक था, उन्हें यरूशलेम भेजा गया। आगे हम देखते हैं जरुबाबेल की अगुवाई में लौटना। अब हम अध्याय 2 में जरुबाबेल के साथ लौटने वालों के नाम एवं कुल दिए गए हैं अर्थात वंश कौन कौन थे उनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो आइए देखें इज़रा की पुस्तक 2:1-2 में लिखा है, जिनको बेबीलोन का राजा नबुकदनेज़र बेबीलोन को बंदी बनाकर ले गया था उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे वे ये हैं, ये जरुबाबेल, येशु, नहमिया, सराया, रेलाया, मोर्दकै, विलशान, मिसपार, विगवय, रहूम और बाना के साथ आए। इस्राएली प्रजा के मनुष्यों की गिनती यह है। मेरे मित्रों, इस सूची को पढ़ना उच्चारण का कठिन अभ्यास है। इब्रानी नाम तो पहले ही उच्चारण हेतु कठिन होते हैं और बंधुआई के बाद उनमें फारसी और बेबीलोन की भाषा का उच्चारण प्रविष्ट हो जाने के कारण उनका उच्चारण और अधिक कठिन हो जाता है। ध्यान दीजिए कि 2 में एक व्यक्ति का नाम नहमिया है जिसे आप गलती से या आप नहमिया पुस्तक का लेखक न समझ लें। जी हाँ, लेखक नहमिया पहले दल के साथ यरूशलेम नहीं आया था। मोर्दकै का नाम भी यहाँ पर पाया जाता है। मोर्दकै नाम का व्यक्ति भी उनमें था जो एस्तेर की पुस्तक का चरित्र नहीं है। सूची में हम कुछ बड़े रोचक नाम भी पढ़ते हैं जैसे अनातोत के मनुष्य। आइए देखें इज़रा की पुस्तक 2:23 में लिखा हुआ है, अनातोत के मनुष्य 128। जी हाँ, लौटने वालों में इस छोटे से नगर के मनुष्यों की संख्या बड़ी थी। यह स्थान भी ध्यान आकर्षण के योग्य है। यही वह स्थान था जहां यिर्मयाह ने भूमि खरीदी थी। आपको स्मरण होगा कि यिर्मयाह के समय में इसराइल के वंशज बंधुआई में जाने ही वाले थे। मित्रों, मैं इस सौदे को लाभ का सौदा नहीं कहूंगा। क्या आप कह सकते हैं कि उसने यह खेत खरीदकर कम बुद्धिमानी का काम किया था? जिस समय यिर्मयाह ने यह खेत खरीदा था उस समय इसराइल का भविष्य ज्योतिर्मय नहीं था, परंतु वह खेत खरीदवाने में परमेश्वर का उद्देश्य था कि वह इसे इसराइल के लौट आने का प्रतीक बनाए। और इसराइली स्वदेश लौट आए। जी हाँ, अनातोत के लोगों का उस पर वैधानिक अधिकार था क्योंकि यर्मयाह ने उसे खरीद कर उन्हें दे दिया था। वे अपनी विरासत पर अधिकार करने जा रहे थे। यर्मयाह अध्याय 32 में इसका वर्णन करता है। मेरे प्रियो, इस गद्यांश में हमारे लिए अनेक आत्मिक शिक्षाएं हैं। हम इस उद्यम में सहभागी हो सकते हैं। कुछ मंदिर का पुनः निर्माण करेंगे, कुछ लोग वचन का प्रचार करेंगे, कुछ विदेश में सेवा करेंगे और कुछ इन विदेशी सेवकों को सहयोग देंगे। इसमें एक अति उत्तम बात यह है कि एक दिन हम प्रतिफल पाएंगे। मेरे मित्रों, प्रत्येक मनुष्य का काम प्रतिफल के लिए परखा जाएगा। हम सब मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होंगे। प्रत्येक विश्वासी मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होगा। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5:10 में लिखा है, अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। इसके साथ ही पहला कुरिन्थियों की पत्री 3:13-15 में हम पढ़ते हैं, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। मेरे मित्रों, आज भी बहुत सारे लोग उस स्थान में अर्थात कुरिंथ में जाते हैं और उस न्याय आसन के सामने अपने फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन वहां पर कोई उनका न्याय नहीं करता है। लेकिन एक समय आएगा जहां पर मुझे और आपको उसका प्रतिफल अर्थात मेरा और आपका न्याय होगा और उसका प्रतिफल मुझे और आपको दिया जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं दोषी पाया जाऊं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वह कहे कि मेरे सब काम काठ घास और पूस हैं। मैं अपने परिश्रम को धुएं में उड़ाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे काम में कुछ सोना भी हो। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु मुझे कहे कि वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, धन्य है तू मेरे विश्वास योग्य दास। मेरे प्रियो, क्या आज आप भी ऐसा ही सुनना पसंद करेंगे? इज़रा की पुस्तक 2:41 में लिखा हुआ है, फिर गवयों में से आसाब की संतान 128। जी हाँ, लौटने वालों में 128 गायक भी थे। उनके जीवन में और उनके मन में आनंद भरा था। उनके पास स्तुति गान के अनेक विषय थे। यह बड़ी रोचक बात है कि लौटने वालों में लेवियों से अधिक गायक थे। इसे हम पढ़ सकते हैं इज़रा 2:40 में। मेरे प्रियो, आगे लिखा है इज़रा 2:61-62 में लिखा है, याजकों की संतान में से हबायाह की संतान, हक्कोस की संतान और वर्जिले की संतान, जिसने गिलादी वर्जिले की एक बेटी को ब्याह लिया और उसी का नाम रख लिया था। इन सबों ने अपने अपने वंशावली का पत्र औरों की वंशावली की पोथियों में ढूंढा, परंतु वे न मिले, इसलिए वे अशुद्ध ठहरा कर याजक पद से निकाले गए। मेरे मित्रों, याजकों के 3 परिवार ऐसे थे जो वंशावली के आधार पर राष्ट्र से संबंध नहीं बना पाए थे, अतः उन्हें अधिकृत रूप से अलग कर दिया गया, परंतु दल के साथ स्वदेश लौटने दिया गया। आज परमेश्वर की संतान को यह स्पष्ट जानना है कि वह परमेश्वर की संतान है या नहीं। पौलुस ने तिमोथियुस को लिखा है 2 तिमोथियुस की पत्री 1:12 में, मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूं। मित्रों, हमारा उद्धार जानता हूं होना है, ना कि सोचता हूं या आशा करता हूं। मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं यह जरुबाबेल के साथ आने वालों की सूची है जिसमें उनकी संख्या दी गई है। आइए देखें, प्रजा 42,360, दास दासियां 7337, गायक जिसमें स्त्री और पुरुष थे 200 और कुल संख्या थी 49,597। मेरे मित्रों, ये एक बहुत बड़ी संख्या थी जो परमेश्वर के वचन का पालन करके अपने देश में लौटे ताकि वे परमेश्वर के भवन का निर्माण कर सकें। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस अध्ययन में हम दो प्रकार के लोगों को देखते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने देश में आना नहीं चाहे और कुछ लोग अपने स्वदेश में लौटकर परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए तैयार हुए, परंतु दोनों की विशेषता है। एक जो नहीं आए, उन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया, सोने चांदी और जो कुछ उनके पास थे उन्होंने उन्हें दिया ताकि परमेश्वर के भवन का निर्माण हो सके, और जो वहां से अपने देश में आए उन्होंने अपने मेहनत के द्वारा उस कार्य को पूरा किया। मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? आप हो सकता है कि आप नहीं जा पाए जहां आप जाना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें अपने सहयोग दे सकते हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा, धनराशि के द्वारा और उनको प्रोत्साहित करने के द्वारा। यदि आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या ही भला होता कि आप भी उस भवन के निर्माण में शामिल हो पाते। मेरे मित्रों, आइए आज हम इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में उन उत्तम और भली बातों को ग्रहण कर लें ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में उत्तम और भली बातों को सीखा है और आज एक आप सही निर्णय के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे एवं शांति प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जिसने पाया है हमें देकर अपनी जान, जिसने पाया है हमें देकर अपनी जान, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हमको जलते दीप है यीशु की ज्योति के, हम जहाँ में।